09 Markham Road. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666. ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس.
ایشین فوڈ سینٹر 905-793-1338. آپ کے کچن کی تمام ضروریات ایک ہی چھت تلے. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز, گروسریز اینڈ سٹیفلز, فریش ڈیری اینڈ ایگ, بیوریج اینڈ کنفیکشنری, برانڈیڈ فوڈز, پرسنل کیئر اینڈ ہاؤس ہولڈ, سویٹس اینڈ سموساز. Order now for in-store free pickup. 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center. 905-793-1338. Asian Food Center.
کیا آپ کی پالیسی اس پینڈیمک میں آپ کو کور کر رہی ہے؟ معلوم کیجئے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے. میں ہوں فضل ودود, انشور پرو فائنینشیل سروسز سے. میرا نمبر ہے 905-607-5000. 27 سال کا انشورنس اور انڈر رائٹنگ کا میرا ایکسپیرینس ہے. میں میک شیور کروں گا کہ آپ کو ایک ایسا پلان دلوایا جائے جو کہ بہترین ہو اور گارنٹیڈ لوئسٹ ریٹ پہ ہو. کال کیجئے 905-607-5000. اور ہاں, ہر جمعرات شام کو چینل 770 پہ میرا پروگرام سننا نہ بھولیے گا, جس میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں بہترین ٹپس انشورنس کے بارے میں.
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہوں؟ تو اسے آج ہی انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج میں رجسٹر کروائیں, جسے فریزر انسٹیٹیوٹ نے ٹاپ پبلک ساؤتھ ویسٹرن اونٹاریو کا اسکول قرار دیا ہے. سٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن, ٹیکنالوجی اینڈ نیو اسکول بلڈنگ اینڈ اے برانڈ نیو گرینڈ جم. مزید معلومات کے لیے کال کریں 519-740-6855.
سمر این آزادی میلا بروس ہفتہ اگست 28 صبح 11 سے رات 10 بجے تک سواگت بینکٹ ہال 6991 مل کریک ڈرائیو مسیساگا میں. فلیگ ہوسٹنگ, ملی نغمے, فیس پینٹنگ, شاپنگ اسٹال, فوڈ کورٹ, کڈ شوز اینڈ مور. فری انٹری اینڈ پارکنگ. اسپانسرشپ یا اسٹال کی بکنگ کے لیے کانٹیکٹ کیجیے ایوب سپرا 416-577-0055. 416-577-0055. سمر این آزادی میلا.
جی صاحب, ویلکم بیک اگین. حاضرین, آپ کو بھی ویلکم بیک اگین. صاحب, ناراض کیوں ہوتے ہو؟ آپ کو میں لے چلوں گا. آپ بھی خبریں آئیں گی, ضرور آئیں گی. شازی جی بیٹھی ہیں یہاں پر اور خبریں دیں گے, مگر اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آج جمعرات کا دن ہے, اور جمعرات کو ہمارے ساتھ ویری ایکسپیرینس, ویری پروفیشنل جناب, ڈاؤن ٹو ارتھ ہمارے اپنے دوست کوکب جاوید صاحب ہوتے ہیں. مارٹگیج کی دنیا میں لے چلیں گے آپ کو, اور کوکب جاوید صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام اجد بھائی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ سر, الحمدللہ. فرمائیے, مارٹگیج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت ساری معاملے ہو رہے ہیں صاحب.
سر جی, بس یہ آئی ہوپ کہ یہ جو سارے ایشوز ہیں, میری تو دعا ہے کہ جلدی سے جلدی وائنڈ اپ ہو جائیں, تاکہ وہ کہتے ہیں نا جی, ٹیک اے ڈیپ بریتھ. وہ والی سچویشن اس وقت ہوئی ہوئی ہے, تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کیا. تو لیٹس سی, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. میں تو یہی کروں گا, اللہ پاک سب کے لیے بہتر کرے, سب کچھ اچھا ہو جائے جلدی سے جلدی سے
جلدی سے جلدی اچھا ہو جائے.
جی سب سکون سے خوش رہیں, پریشانیوں سے دور رہیں.
اور صاحب, سب سے بڑی پریشانی جو لوگوں کو ہوتی ہے, میجورٹی کو, وہ ان کے پاس گھر ہوتے ہیں, کانڈوز ہوتے ہیں, اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اینڈ ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, ان کی مارگیجز ہر تین چار سال بعد واپس آ جاتی ہے, پانچ سال بعد واپس آ جاتا ہے. تو کیا ایڈوائز کریں گے ان لوگوں کے لیے؟
سر جیسے مجد بھائی آپ کو پتا ہے, میں تو بہت عرصے سے یہی سیم پروفیشن میں ہوں.
جی
الحمد للہ, بینکنگ ایکسپیرینس ہے. آئی نو ان اینڈ آؤٹ, اور آئی نو دیئر سولوشن, آئی نو ہاؤ ٹو فکس اے پرابلم. کہ کوئی بھی ایشو ہے, کوئی بھی آپ کے لیے کوئی پرابلم آ رہی ہے, تو الحمد للہ اتنا ایکسپیرئنس اور نالج ہے کہ میں ہمیشہ اس کا سولوشن ڈھونڈ لیتا ہوں کہ اس کو اچھے سے اچھے انٹرسٹ ریٹ پہ کیسے ہو اور جلدی سے جلدی ہو. اگر آپ کی کلوزنگ ہے, کلوزنگ کے وہ جو لاسٹ آپ کا ڈیڈ لائن ہے, اس سے یہ کراس نہ کرے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اگر آپ کی مارگیج رینیول ہے, آپ فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہیں, آپ کا کریڈٹ خراب ہے, کوئی ایشو ہے, आपने घर में आपके एक्विटी है, आपको किसी वजह से कैश आउट चाहिए, कैश फ्लो स्टडी करने के लिए आपको कुछ घर को रिफाइनेंस करवा के कुछ अमाउंट उसमें से निकालनी है, तो मुझे जरूर कॉल करें अगेन। जो अल्लाह ताला ने नॉलेज या जो मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपीरियंस है मेरा, तो उसका ये है विद कमिटमेंट, जो भी मेरे आपके साथ कमिटमेंट है वो 100% पूरी होगी, डिसअपॉइंटमेंट कोई नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम कोई नहीं, और जो भी है आपका हर चीज ऑन टाइम होगी इंशाल्लाह, और आपका सबका जो भी है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ। और मजद भाई आपको तो पता है मैं प्राइवेट मॉर्गेजेस, प्राइवेट लोन, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मेरे पास अरेंजमेंट होती है ऑलवेज उसकी। अगेन अगर आपको अपने घर को प्राइवेटली रीफाइनेंस करना है या आपको सेकंड प्राइवेट मॉर्गेज चाहिए, थर्ड प्राइवेट चाहिए, हॉबी फॉर्म है, कमर्शियल लैंड है, वीकेंड लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, मल्टीपल यूनिट्स, आपने कमर्शियल लोन चाहिए उसके लिए, तो मैं सिर्फ आपसे सिर्फ एक कॉल की डिस्टेंस पे हूँ, और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैं कॉल इंशाल्लाह पिक करूंगा, कोई क्वेश्चन आपका, कोई भी क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह
स्पेशली कौका भाई, स्पेशली जो न्यू बायर्स होते हैं ना, फर्स्ट टाइम बायर्स और नए न्यू कमर्स जो होते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो एक्सपीरियंस लोगों के हाथ लगे, क्योंकि दूसरे ऑफकोर्स एवरीबडी ट्राइज देयर बेस्ट, मगर वो उनको मिसगाइड भी कर सकते हैं।
जी मजद भाई, ये बिल्कुल आप बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये होते हैं वो। अब ये कि जो न्यू कमर्स हैं उनको भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती किसके पास जाएं, किससे बात करें, उनका बड़ा लिमिटेड सा एक्सपोजर होता है, तो उनको जो भी पहला दूसरा नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर आता है नजर, वो ट्राई करते हैं विद ऑल सिंसेरिटी और विद ऑल देयर ट्रस्ट कि जी हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं किसी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ना ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन होता है मिस्टेक होती हैं, फिर वो कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, कंप्लेंट्स भी होती हैं, तो मजद भाई ये होता है। लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं कि जी ऑलवेज जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं इस फील्ड और प्रोफेशन में, उसको आप उनको आप जरूर कॉन्टेक्ट करें, लेकिन किसी को कॉन्टेक्ट करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक कर लें, उनका एक्सपीरियंस देख लें, उनसे एक दफा बात करके देख लें, पहले आपकी सेटिस्फेक्शन होती है जरूर उनसे करें, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप पहले फाइनल कॉल से पहले वो बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस जरूर चेक कर लें।
सब जैसे मैंने आपसे कहा, वेरी एक्सपीरियंस, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, आपने सुनाई इनकी बातचीत। एक दफा कौकब जावेद साहब के पास जरूर आइए, जब भी आपने मॉर्गेज की कोई बात हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे फार्म लैंड हो, चाहे आप न्यू कमर्स हैं, या ये कि आप फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, रिन्यूअल करवाना हो, कुछ भी हो व्हेन इट कम्स टू मॉर्गेजेस, एक दफा कौकब जावेद साहब से कांटेक्ट जरूर करें। फोन नंबर मैं दे देता हूं आपको, 416-454-6065, जनाब कौकब जावेद साहब का फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
थैंक यू सो मच ब्रदर, अल्लाह सबको महफूज और खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।
आमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मैंने आपकी बातचीत करवाई अब जनाब कौकब जावेद साहब से, और अब क्या करेंगे, अब साहब ले चलेंगे आपको कहां पर, समा फरमाइए पहले ये। जी सामने करम, वेलकम बैक अगेन। नाजरीन कहेंगे यार हम भी तो हैं, हाँ जी आपको भी भूला नहीं हूँ। सामने नाजरीन दोनों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब क्या करेंगे, अब 6:09:40 हमारी घड़ी में हो चुके हैं, टाइम कम है और खबरें ज्यादा हैं, तो पहले खबरों की तरफ ले चलते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे। परवाह ना करें, हम 8:15 बजे तक आपके साथ हैं यहाँ पर। शाज़िब मलिक जी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, भाई कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह,
ठीक है ना। मैंने कहा था ना पाकिस्तानियों को नहीं छेड़ना होता, लेकिन कुछ लोग जो है वो बात समझते नहीं है, हमारी खबरें रोज सुनते नहीं। हम तो रोज कहते हैं पाकिस्तानियों को छेड़ना नहीं है। वो एक परी आ गई ना नीचे, तो उसको मिल गए दो हमारे जो है वो ब्लैक भाई। तो परी ने कहा कि भाई तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। तो उन दोनों ने कहा कि भाई हमको जो है गोरा बना दो। तो जब तीसरे के पास गई, तीसरा था हमारा पाकिस्तानी जुगाड़ू, तो परी ने कहा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? कहता है मैं तो जी दरवेश आदमी है, अपने वास्ते मेनू कुछ नहीं चाहिए, इन्हों नू वापस काला बनाओ।
हो गया मामला,
मामला हो गया,
मामला ही हो गया। बड़े खुश थे बेचारे,
अच्छा गोरे, गोरे। एक था ना गोरा इंग्लैंड में, उसकी कंपनी थी जूतों की।
हाँ जी।
तो वो जूते थे बड़े एक्सपेंसिव, तो वो लड़कियां आती थी उनका दिल आ जाता था जूतों पे। तो वो जूते होते थे एक्सपेंसिव, तो वो बड़ा एक कर्टियस वहां पे सेल्समैन था, उसको कहती थी भाई ये 500 पाउंड्स जो है उसका वो कहता जूता है, अच्छा 300 पाउंड्स ले लो, 200 पाउंड कल आके दे देंगे तुमको। तो इस तरह करके वो बड़ा मालिक बड़ा तंग आ गया, वो कहने लगा भाई ये क्या मजाक है मेरे इतने एक्सपेंसिव, फिर वो लड़कियां वापस आती नहीं है। तो ये ऐसे इनको कम कीमत, उसने एक पाकिस्तानी रख लिया, उसको पता था पाकिस्तानियों के बस जुगाड़े हैं।
अच्छा।
उसने पाकिस्तानी रख लिया, ठीक है जी। तो वहां पे एक लड़की आ गई बड़ी हसीन सी, तो उसने देख शेख के एक जूता उसी तरह कोई 600-700 पाउंड्स का था वो जूता, तो डिजाइनर जूता है। तो उसने कहा जी मेरे पास तो 500 ही हैं, तो ये 200 मैं तुम्हें कल आके दूंगी। कहता ठीक है, डब्बा बंद करके दे दिया। तो वो ओनर आ गया, कहता है मैंने तो गोरे को निकाल के तुम्हें रखा है क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग बड़े जुगाड़ू हो, तो तुमने क्या किया? कहता जी मैं आपके पहले गोरे की तरफ पागल नहीं हूं कि एक राइट एक लेफ्ट दे दूं, मैंने दोनों उसको लेफ्ट पैर दे दिए हैं, इसलिए वो कल आएगी 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 इधर पैर लेने के लिए।
मैं समझा कि वो कहेगा कि मैं तो डिब्बे में सिर्फ एक ही जूता रखा है और दूसरे जूते के लिए कल आएगी।
वैसे भी कर सकता था, वैसे मैंने जी दोनों लेफ्ट रखे हैं मैंने।
हाँ जी,
ये आएगी आएगी
आएगी जरूर आएगी,
जब आएगी 200 ले लूंगा मैं।
हो गया मामला।
तो इसलिए जनाब पाकिस्तानियों को छेड़ना नहीं है,
पंगा नहीं लेना।
हाँ पंगा बिल्कुल नहीं, आप उनसे पंगा नहीं लेने का,
प्यार से जाल ले लो।
पंगा नहीं लेने का। वो आपकी तरह का तो एक था ना, एक इसी तरह हमारा पाकिस्तानी सूजू करता रहता था। तो वो सारे जी वो उधर अमेरिका में इंग्लैंड में फिरा, सारे मरे हुए बैठे हुए स्टूलों पे, ऐसे ऐसे वो बुढ़े गोरे ऐसे ऐसे पी रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी ऐसे भी कर रहा और भाग भी रहा, तो वो गोरे बड़ा हैरान हुए, कहते हैं तू क्या कर रहे हो? वो मतलब उन्होंने तो अंग्रेजी में पूछा होगा, उन्होंने कहा था भाई तू क्या कर रहा है, तू भाग क्यों रहा? कहता मैं देख रहा हूँ ये सिगरेट जो है कितने किलोमीटर भागती है मेरे साथ। जुगाड़े देखे ना वो भाई, देखे कितने
साइंटिफिक,
कोई कितने कुछ ये जो इंटेलिजेंट कॉम है
साइंटिफिक।
हाँ देखे
आप ये देख लें,
ये बातें कोई और सोच सकते,
ये कब खत्म होगा ये?
हाँ
कितना साथ देगा मेरा
जी, मेरा कितना साथ
हो गया जी,
देखे
मामला ही हो गया।
बड़ी इंटेलिजेंट कॉम है,
कहानी पाओ जी।
चलो जी कहानी पाइए बस जी, हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, बहुत सारी प्यारी स्टोरियां आपको मिल जाएंगी, तो वो प्लीज जरूर विजिट किया करें। ओके जी, अब हमारी कहानियां जो है वो बड़ी आज लंबी चौड़ी हैं, तो इसलिए हम कहानियां पहले ही शुरू कर देते हैं। अच्छा जनाब, जो आज हैं जनरल वेन आयर, उन्होंने कहा है, ये है एक्टिंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कनाडा के, उन्होंने कहा है जी कि हम जो है हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली लास्ट मिशन था और हमने आज अपना जितना वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पर्सनल जो है उनको हमने जो है अब वहां से निकाल लिया कबूल से और अब हम आ गए हैं, लेकिन जाहिर है कि उन लोगों के ऊपर ये बर्डन रहेगा जरूर क्योंकि हम बहुत सारे लोग जो है वहां पे छोड़ भी आए हैं, तो वो पर्सनल जो है हमारे मिलिट्री के वो थोड़ा गिल्टी तो फील करेंगे, लेकिन हमारे लिए एब्सोल्युटली ये मस्ट था कि हम जो हैं यहां से निकल जाएं, हम निकल गए। और उन्होंने ये भी आज बताया, उन्होंने कहा कि तकरीबन 3,700 जो है उन लोगों को हमने किया। अच्छा अब ये जब स्टेटमेंट आई ना कि मिलिट्री जो है वो गिल्टी फील करेगी कि बहुत सारे लोगों को उसने पीछे छोड़ दिया, तो जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने उसके ऊपर जवाब दिया, क्योंकि आज ये जब कैंपेन ट्रेल पे थे तो इनसे जर्नलिस्टों ने पूछा, उन्होंने कहा ये आप अफगानिस्तान के ऊपर क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं बताएं इसके ऊपर, तो कहने लगे कि भाई ये बहुत ही, उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डे, बड़ा डिफिकल्ट डे है, एक तो वो ब्लास्ट भी हुआ है और फिर ये हमने आज एंड कर दी है अपने इवैक्यूएशन जो फ्लाइट्स हैं, तो उसके लिए
लेकिन फिर
सेफ्टी, तो उन्होंने कहा जी लेकिन फिर भी हम दिन रात काम करते रहेंगे और हम वहां पे कोशिश करेंगे, इंश्योर करेंगे कि वहां पे जो है पीस रहे, सिक्योरिटी रहे और अपना जो हमारा हिस्सा है वो हम उसके अंदर डालते रहेंगे। वो कहते हैं जी कि हम کوشش کریں گے کہ اگر اور بھی کسی اور بھی کوئی طریقہ ہے تو اس سے ہم اگر کابل سے لوگوں کو نکال سکیں.
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو افغانستان ہے تو یہ دنیا سے کٹ آف تو نہیں ہو جائے گا.
نہیں نہیں نہیں
ہے نا, ابھی ان کی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے.
نہیں ہے.
پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ اگر ایک دفعہ جب گورنمنٹ بن جائے گی اور ملک چلنا شروع ہو جائے گا
تو نارمل فلائٹ شروع ہو جائیں گی,
نارمل فلائٹ شروع ہو جائیں گی تو یہ جتنے بھی لوگ وہاں پر ہیں ان کو آئی ڈونٹ تھنک ان کو پریشانی کی ضرورت ہوگی کہ وہ وہاں جا کے اپنے جیسے ٹکٹ خریدیں اپنا اپنا ویزا ہے آپ کا یہ سب کچھ ہے تو آپ مگر ذرا لیٹ دا تھنگ سیٹل ڈاؤن.
یس جی 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 بالکل وہی ہے. تو بس وہی آج انہوں نے کہا کہ ہم کام کرتے رہیں گے, ہم لائیں گے, ہم بہت سارے لوگوں کو لے کر آئے بھی ہیں اوروں کو بھی لائیں گے لیکن ابھی ذرا تھوڑا سا ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. اچھا اور آج ٹروڈو صاحب جو اپنا وہ کر رہے تھے جو آپ کو ہم نے بتایا ہی ہے کہ اپنے الیکشن ٹریل پہ تھے, آج کیوبیک میں تھے تو کیوبیک میں انہوں نے آج سینئرز کے اوپر بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ویسے تو آپ کو پتا ہی ہے کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو ہے $500 جو ہیں دیں گے, ونس جو پیمنٹ تھی یہ وہ ہم ان کو کریں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جتنے بھی یعنی کہ یہ اوور 70 کے لیے 5 کے لیے تھا تو انہوں نے کہا جی کہ اب ہم جو ہیں سنگل کپلز جو ہیں جن کو کہ ہم کو ہماری ہیلپ چاہیے جو کہ تقریباً 2.2 million ہیں ان کو بھی $750 جو ہیں بڑھا دیا یعنی کہ ان کو وہ دیں گے ہم. جی آئی ایس انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے ان کو. اور ٹروڈو صاحب کی جو اصل میں جو بات ہے جو اس سلسلے میں جو سینئرز کے سلسلے میں ایٹ لیسٹ سینئرز کو پتا ہے کہ ہی میڈ گڈ آن ہز لاسٹ پرومس کیونکہ یہ انہوں نے پہلے بھی اپنی الیکشن میں کہا تھا اور اب بھی کیا تھا. اچھا ٹروڈو صاحب اس گروپ کو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ موسٹلی جو ہوتے ہیں یہ لوگ یہ ڈیسائیڈڈ ووٹرز ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح کے ان کے ساتھ کرتے ہیں تو آج انہوں نے یہ پرومس کیا.
ایک منٹ اس سے پہلے کہ آگے بڑھے ایک میں اسپیشل اناؤنسمنٹ کر دوں آپ کو کہ کیونکہ ویدر بہت خراب ہے باہر,
ہاں بہت تیز بارش ہو رہی ہے,
بارشیں ہو رہی ہیں اور ایسے وقتوں میں اکثر جو فریکوینسی ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو جب فریکوینسی ڈسٹرب ہوتی ہے تو بعض دفعہ اسٹیٹک آتا ہے ریڈیو کو سننے میں. اگر آپ کو بھی کوئی ایسی پریشانی ہے تو پریشان نہ ہو بھائی, میں آپ کو ایک بڑا اچھا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں اور ٹوٹکا یہ ہے کہ نمبر 647 یہ تو یاد رہے گا 647 ہر ایک کو 872-4900 یہ آپ نمبر ڈائل کریں اپنے سیل فون پر اور اپنے برابر نہ رکھیں کہیں دور اٹھا کے رکھ دیں اپنا اور وہاں پر جو ہے اسپیکر پہ آپ ہمیں آرام سے سن سکتے ہیں. نور اے پرابلم 647-872-4900 آپ اپنے ٹیلی فون پہ ہمیں سن سکتے ہیں. جی
جی اچھا جگمیت سنگھ صاحب جو تھے وہ آج ونی پیک میں تھے اور انہوں نے آج پھر سے ہاؤسنگ کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہاؤسنگ کا جو کرائسس ہے ہم ختم کریں گے. ظاہر ہے کہ بڑے انہوں نے اعتراض کیے ٹروڈو صاحب کے اس کے اوپر لیکن بیسیکلی جو یہ جہاں پہ یہ تھے آج وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایریا ہے کیونکہ وہاں پہ انڈیجنس جو لوگ ہیں وہ کافی رہتے ہیں. اچھا ان کے ساتھ جو تھیں آج این ڈی پی کی کینڈیڈیٹ تھی میلسا چنگ مواٹ اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ہاف چائنیز ہیں ہاف میٹس ہیں تو وہ بھی کوشش کر رہی ہیں یہاں پہ جو ہے یہ کیمپین کرنے کی ان کے ساتھ جو ہے تاکہ یہاں پہ کیونکہ یہ پتا ہے آپ کو کہ یہ لبرل رائڈنگ ہے نا بیسیکلی ہے تو تھوڑے سارے لوگ ہیں تھوڑے سارے ووٹس ہی آتے ہیں لیکن ہے بڑی امپورٹنٹ یعنی اٹ از آل اباؤٹ سیٹس کہ کتنی سیٹس آپ ون کریں گے. تو یہ جو تھیں یہ بھی آج ان کے ساتھ تھیں اور اس کے علاوہ جو ہیں ایک اور بھی ان کے ساتھ کینڈیڈیٹ تھیں لیا کزان جو ہیں وہ بھی کرتی ہیں کر رہی ہیں اپنی کیمپین وڈ ماؤنٹن لکوٹا نیشن سے وہاں سے سسکیچوئن سے تو وہ بھی ان کے ساتھ تھیں. تو یہ سارا وقت جو ہے یہ اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں کہ ہم جو افورڈیبل ہاؤسنگ کا جو پلان ہمارا ہے جو این ڈی پی کا یہ سب سے زیادہ فیزیبل ہے کیونکہ یہ جو ببل ہے یہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں پھٹ جائے گا پھٹے وٹے گا کوئی نہیں اس لیے کہ کوئی پراپر کبھی ہاؤسنگ کی کسی نے اسٹریٹجی بنائی ہی نہیں ہے پالیسی نہیں وہ لوگ لے کر آئے ہیں تو جو ہماری پالیسی ہے دیٹ از دا بیسٹ تو اس کے اوپر آج انہوں نے زیادہ جو ہے زور دیا. ایرن اوٹول صاحب جو تھے وہ آج بات کر رہے تھے زیادہ تر گگ اکانومی ورکرس کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے امپلائمنٹ انشورنس نہیں ہوتی اور یہ بڑے پرابلمز فیس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح کے ملینز آف کینیڈینز ہیں جو کہ کوالیفائی ہی نہیں کر سکتے ہیں امپلائمنٹ انشورنس کے لیے ساری ساری زندگی کام کرنے کے بعد. تو جس وقت آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں جس وقت آپ کام نہیں کر سکتے ہیں پریمیمز آپ کے بڑھ جاتے ہیں چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں تو اٹ از ناٹ فار یو نو ناٹ ریلی فیئر. تو وہ کہتے ہیں ویسے بھی جو آپ کو ہم پیسے دیں گے جو ہم پالیسی بنائیں گے وہ ویسے بھی ٹیکس فری ہوئے گی تو یہ جو ہے आज उसके ऊपर वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्क प्लेस जो है वो उनके सारे सिनेरियोज जो है वो चेंज होते जा रहे हैं और इसी तरह हमारी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती जा रही हैं, वर्कर की नीड चेंज होती जा रही हैं। तो अंडर कैनेडाज रिकवरी प्लान जो है कंजर्वेटिव पार्टी ये गिग इकोनॉमी जो है उसमें कहेगी कंपनीज को टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस।
Exactly.
तो उसके लिए जो है फिर उसके अंदर उनको जो उनके पेंशन प्लान और वो हैं उन लोगों के बेटर हो जाएंगे। अच्छा, ग्रीन पार्टी लीडर जो हैं उन्होंने आज दो चीजें एक तो कही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये कही है कि जितने भी ये जो अब लीडर्स हैं इलेक्शन ट्रेल पे 24 आवर्स के लिए अपनी इलेक्शन कैंपेन को रोक दें क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और ये हुआ। और उन्होंने कहा कि इसकी ऐसा नहीं है कि कोई मिसाल मिलती नहीं है। जब सीरिया का मसला हुआ था तो तब जो है लास्ट टाइम तो उस वक्त 24 आवर्स के लिए एक मिनिस्टर जो थे उन्होंने अपनी कैंपेन रोक दी थी। तो अब मैं तीनों लीडर्स जो हैं उनको मैं कहना चाहती हूं कि एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए अपनी कैंपेन को ये खत्म करके अफगानिस्तान के इशू पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में काफी जो ये साइंस लगे हुए हैं डिफरेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लॉन्स के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर उसको काफी उसके ऊपर ग्रेविटी की गई है। वो कहते हैं उसी सिलसिले के अंदर मुझे भी जो है बहुत सारे जो है थ्रेट्स आ रहे हैं और वो हो रहा है। तो वो कह रही हैं कि भाई ये तो तरीका जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और वो कह रहे हैं कि ये लोगों को जो है सोशल मीडिया जो है ये प्रोवोक करता है ऐसे काम करने के लिए। अच्छा, यहां पर एक समारा सेंटर फॉर डेमोक्रेसी है और उसने फाइंड आउट किया है कि तकरीबन 350,000 ट्विटर के जो कॉमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जो हैं ये इस तरह के हैं
ऑफेंसिव
हैं जो कि लोगों को प्रोवोक वाकई करते हैं। दे आर वो कह रहे हैं कि दे कैन बी कंसिडर्ड इलेक्शन कैंपेन टॉक्सिक कमेंट्स। तो ये आ रहे हैं और इसको जो है ट्विटर को देखने की जरूरत है और उसके ऊपर काम भी करने की जरूरत है। ऑन्टेरियो में जो यूनिवर्सिटीज हैं जी बहुत सारी जैसे कि जो है कॉल्टन यूनिवर्सिटी जो है ऑटोवा में या कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है लंदन में या कि मैकमास्टर यूनिवर्सिटी है हैमिल्टन में, उन्होंने पहले उनकी ये पॉलिसी थी कि अगर कोई लोग यानी कि जो बच्चे या स्टाफ अनवैक्सीनेटेड हैं तो वो भी आ सकते हैं अगर टेस्टिंग करा ले, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि क्लासेस शुरू होने से पहले उनको जो है ये वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। अब वो कह रहे हैं कि अब हम अपने कैंपसेस के ऊपर जो है अनवैक्सीनेटेड लोग जो है उनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते और हम नहीं चाहते कि वो लोग यहां पे आए। तो उन्होंने कहा है जी कि अब हमने आपके लिए जो है डेडलाइन यानी कि मैक्स सितंबर 10 से और 8 से खुल जाएंगी ज्यादातर यूनिवर्सिटियां, तो वो कहते हैं जी मैक्स आप उसको जो खींच सकते हैं दैट इज अक्टूबर तक आप सबको चाहे स्टाफ हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं सबको जो है वैक्सीनेटेड होना चाहिए। तो इन तीन यूनिवर्सिटियों ने जो अनाउंस किया तो मुझे लगता है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज भी
मिसागा में इंक्लूडेड आज मिसागा स्टाफ को भी उन्होंने आज
हाँ एम्प्लॉयज जो हैं उनके मिसागा के
एग्जैक्टली उनको भी ऑर्डर दिया गया कि वो भी जैसे आपको पता है कि पुलिस सर्विसेज
टोरंटो पुलिस
उन्होंने भी ये किया है। जॉन टोरी साहब ने कहा है कि अपने अपने जो स्टाफ है उनको तो ये सारी के सारे डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट दे आर गोइंग एंड अब जितने बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं तो उनको भी कहा ये जा रहा है कि भाई
आपने कहा था कुछ दिन पहले
एग्जैक्टली फिर एम्प्लॉयर्स जितने बड़े एम्प्लॉयर्स हैं जहां पर 6-6, 8-8 हजार लोग काम करते हैं एक वक्त में तो वहां पर भी जैसे अमेजोन वगैरह के जगह हैं तो इन लोगों को भी कहा जा रहा है कि भाई आप भी मैंडेटोरी कर दो कि भाई एवरीबॉडी हैज टू और मस्ट गेट दिस वैक्सीन।
बिल्कुल ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि अब इन यूनिवर्सिटीज के पीछे हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटीज भी दे माइट ऑल्सो फॉलो सूट एंड दे विल से कि जी हाँ बिल्कुल हमारे भी
Somebody had to initiate that.
जी तो हमारे भी उसके ऊपर कैंपसेस पे अनवैक्सीनेटेड आने की जरूरत नहीं है। ये कुछ दिनों से जी लड़ाई शुरू हुई थी अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में और ये लड़ाई जो है काफी हॉस्टाइल हो गई है और इनके बीच में जो है अब ये लग रहा था कि जैसे अब जंग ना कहीं शुरू हो जाए। तो आज जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है OIC और अरब लीग और इवन सऊदी अरेबिया दे ऑल दीज कंट्रीज हैव टोल्ड देम कि भाई तुम लोग बैठ के अपना जो है ये मसला जो है हल करो। यहां तक बात पहुंच गई है कि अरब लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अहमद अबुल गेट उन तक ने कहा है कि ये हमको इसके ऊपर रिस्ट्रेंट शो करने की जरूरत है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज हैं इन सबको बैठ के बात करने की जरूरत है क्योंकि ये जो टॉक होती है ना ऐसे जो मतलब लूज टॉक होती है फिर वो एस्केलेट कर जाती है और फिर वो वॉर की शक्ल इख्तियार करती है। तो हमको उस स्टेज के ऊपर लेके नहीं जाना क्योंकि ऑलरेडी एक तो दुनिया की कंडीशन भी फ्रेजाइल है और रीजन की तो और भी ज्यादा फ्रेजाइल है क्योंकि
वो मुस्लिम कंट्रीज जो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो रोक दें।
हाँ 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 वही उसी की तरफ इशारा कर रहे थे कि ऑलरेडी जो मुस्लिम कंट्रीज कुछ जो है दे आर एट वॉर तो अब हमको और मुस्लिम कंट्रीज नहीं चाहिए इसके अंदर तो इसलिए हमको ये खत्म करने की जरूरत है। वैम है जी WAM ये UAE की ऑफिशियल वायर सर्विस है और इसके मुताबिक जो है आज यूएई के बहुत ही सीनियर ऑफिशियल जो है उन्होंने आज बहुत ही रेयर जो एक विजिट किया है कतर को. आपको पता है कि कतर के साथ जो है बहरेन, उमान, यूएई, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ने अपने जो टाइज थे वो सिवियर कर दिए थे कुछ अर्सा पहले, लेकिन फिर इन्होंने वही जो ट्रंप साहब का था कि अगर आप रिकग्नाइज करेंगे इसराइल को तो मैं आपके बीच में दोस्तियां बनाऊंगा, तो ये जैसे जैसे कर रहे थे तो इनके बीच में दोस्तियां वो बना रहे थे. तो अब ये दोस्तियां अब जबकि बन गई हैं तो आज जो है यूएई से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएई के शेख तहनून बिन जायद अल नाहियान, वो आज मिले हैं कतर के जो रूलिंग अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनसे मिले हैं और इन्होंने जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक एनहांसमेंट्स की बातें की हैं, जिसको के रीजन के अंदर बड़े ही अच्छी नजर से देखा जा रहा है क्योंकि इनके बीच में काफी लड़ाई चलती रही. अच्छा जी, कतर अब देखे ना, एक तरफ तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो कहती हैं ओ जी आर्म्स नहीं होने चाहिए और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं फैलने चाहिए और ये नहीं, और फिर दूसरी तरफ खुद ही जो है ये जो रिच अरब कंट्रीज हैं इनको अपने आर्म्स और ये जो एम्यूनिशन है ये बेचते हैं. आज यूएस जो की जो कोलैबोरेशन है बोइंग के साथ वो बना रहे हैं F-15 नेक्स्ट जनरेशन F-15 कॉम्बैट एयर क्राफ्ट, ये जनाब इन्होंने अब कतर को दिए हैं, कतर को बेचे हैं, मल्टी बिलियन डॉलर ये डील थी कतर के साथ और उन्होंने कहा जी कि हम बड़े खुश हैं और हम आपको ये दे रहे हैं और ये जो है आपकी मिलिट्री को नेक्स्ट लेवल पे यानी कि आपके एयरफोर्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और कतारी भी बड़े खुश हैं क्योंकि जो कतारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फॉर डिफेंस अफेयर्स खालिद बिन मोहम्मद अल अथिया, वो भी ये जो सेरेमनी हुई है जिसमें कि ये इन्होंने लिए ये नेक्स्ट जनरेशन जो आमिर वज़रा तैयारा दिखा दें बड़ा खूबसूरत है तो वो जो है इन्होंने जो है वो लिया है. तो उसमें इन्होंने बताया है कि जी वो जो जनरल ग्रेग गिलर्ट जो थे कमांडर ऑफ 9th एयरफोर्स उन्होंने भी कहा है कि जी हम जो है सेम हमारे जो है क्रिटिकल स्टेबिलिटी वैल्यूज जो है वो हम सेम है हमारे और हम इनके साथ कतारी जो है उनके साथ हम शेयर करते हैं तो वी आर वेरी ग्रेटफुल ऑन दिस कोलिशन. तो अब ये आप जनाब इस तरह न्यू जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इनको देंगे, सऊदी अरेबिया को और अपने वो देंगे, तो फिर भाई मिडल ईस्ट में जंग कैसे रुकेगी, यू नो? फिर आप कहेंगे जी कि ये इन लोगों के पास जो है वो वेपन्स नहीं होने चाहिए और ये नहीं है वो नहीं है, तो अब ऐसे देखें अब क्या होगा. अच्छा जी, जापान जो है उसके पास थी तकरीबन 1.63 मिलियन मोडर्ना के डोजेस जो कि उन्होंने आज डिस्कार्ड कर दिए हैं. उसकी वजह यह है 1.63 मिलियन आप देखें डोजेस, वो कहते हैं जी कि जिस वक्त हमने हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये भेजे कि आप ये लोगों को दें, उन हेल्थ प्रोफेशनल्स ने वायल्स बंद थे बेशक बंद थे वायल्स लेकिन उनके ऊपर जो है फॉरन कुछ जो है सब्सटेंसेस देखे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इसको खोला तो ये कंटेमिनेशन हो सकती है इसके अंदर, तो एज अ रिजल्ट हम ये रिस्क नहीं ले सकते. जापान की हालत बहुत ही खराब है, ऐसा नहीं है कि इट्स अ रिच कंट्री तो हालत उसकी बहुत अच्छी है, उसकी हालत बहुत खराब है क्योंकि काफी स्केर्सिटी है उनके पास जो है वैक्सीन की और ये इट्स अ ह्यूज नंबर 1.63 मिलियन, तो ये अब अगर इसको ये डिस्ट्रॉय करेंगे तो नया खेप आने में काफी टाइम लगेगा. तो वो जो उनकी वो जो करना चाह रहे हैं जल्दी 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 वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगी, अब नहीं हो पाएगी उनका जो वो प्लान था. अच्छा जी, आज बड़ी अजीब बात हुई है, अजीब कह सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े मुल्कों में ये होता होगा, छोटे मुल्कों में तो ये बिल्कुल आप जरूरत ही नहीं कर सकते हैं. यूएस कैपिटल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं जनाब
जी,
उन्होंने आज ट्रंप साहब को सू कर दिया है. उन्होंने कहा है कि वो जो कैपिटल हिल के ऊपर 6 जनवरी को हमें मारा गया, पीटा गया, ये जो हमारे पे अटैक्स किए गए और इनके जो साथी थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वाले, इनका एक एलाय था रॉजर स्टोन और जो बाकी मेंबर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे ये प्राउड बॉयज और ओथ कीपर्स एंड ऑल दैट, जिन्होंने के वायलेट ये जो करते हैं इनकी जो हमारी जो आजादी की वो जो है वैल्यूज जो उनको करते हैं ये क्लू क्लक्स क्लैन वाले टाइप के लोग जो है इन सब के अगेंस्ट जो है इंक्वायरी बिठाने की
व्हाइट सुप्रीमिस्ट.
हाँ जी, व्हाइट सुप्रीमिस्ट बिल्कुल. तो आज उन्होंने जो है वहां पे लॉयर्स जो हैं इनके 7 ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने ये सू किया है और इनके जो लॉयर्स हैं अंडर द कमिटी फॉर सिविल राइट्स लॉ उन्होंने कहा है कि जी हमारा जो है इनके ऊपर आप केस करें और आप फाइंड आउट करें कि ये अनलॉफुल और ये जो डोमेस्टिक टेररिज्म जो की गई थी इसकी क्या वजह थी और ये क्यों है. तो अब ये जी इसके ऊपर इंक्वायरी जो है वहां पे फेडरल कोर्ट जो है वाशिंगटन में उसमें बैठने वाली है. अमेरिका के अंदर जी जो सिएटल का एरिया है वेस्ट रिचलैंड के में वहां पे एक जो है वो गनमैन जो है उसने काफी शूटिंग्स की हैं। सबसे पहले उसने अपने पेरेंट्स को मारा, फिर उसके बाद उसने एक नेबर को मारा, फिर एक बाहर निकल के एक आदमी को जो कि एक रेस्टोरेंट का जो था ओनर था उसको मारा, फिर उसके बाद जो है जनाब एक और लोग को मारा, फिर उसके बेटे को मारा, तो काफी सारे लोगों को मारा जी आज इसने। तो वो ये इसको जो है ये जाहिर है कि ये रैम्पेज माना जा रहा है वहां पे, इसने किया है वहां पे। तो वो जिस वक्त पुलिस बाय द टाइम वो आई तो उन्होंने देखा कि जी कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में बर्नड हैं, कुछ लोग जो हैं घरों के जो हैं वो पीछे उनको काफी गन शॉट्स आए हुए थे। बहरहाल उनको फटाफट जो है ट्रांसपोर्ट किया हॉस्पिटल में। अब पता नहीं है कि इस लड़के का क्या मोटिव था, क्या था इसको, इसने क्यों ये हरकत की। बहरहाल जी काफी उसने वहां पे शूटिंग्स वगैरह की हैं और जो है उसमें बर्न पिकअप्स और घर तीन जला दिए पूरे, इंक्लूडिंग हिज ओन हाउस, उसके पेरेंट्स का जो हाउस है वो तीन घर भी जला दिए। तो काफी जो है ये आज वहां पे जो अमेरिकन चैनल्स हैं उसके ऊपर ये दिखाया जा रहा है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन जो है जी आज वो काफी एक्टिव हुए हुए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बात की है प्रेसिडेंट शी से जो चाइना के हैं, और उन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, हालांकि दो डेकेड्स तक वहां पे अफगानिस्तान में ये फोर्सेज रही हैं, तो ये क्या ट्रेनिंग देती रही हैं, ये क्या करती रही हैं कि अफगानिस्तान ने इसको तालिबान ने इसको ओवर रन कर लिया है विद इन जस्ट इन मैटर, इट वॉज अ मैटर ऑफ डेज कि उन्होंने ओवर रन कर लिया, तो इसकी क्या वजह। तो अब हमको जो है अपने जो कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो क्रेमलिन जो है उसके मुताबिक एक फोन कॉल की थी पुटिन साहब ने शी साहब को, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमको अपनी ये जो कुछ भी रीजन के अंदर चल रहा है उसके अंदर बात करने की जरूरत है, और ये जो सिक्योरिटी है रीजन के अंदर और स्टेबिलिटी उसके लिए, और हमारे बायोलेटरल रिलेशन जो है उनको और मजबूत करने की जरूरत है, और कॉन्स्टेंट हम लोगों को कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो हम बात करेंगे तभी ये जो वेरी एक्टिव दीज डेज वेरी वेरी एक्टिव हाजी उसने ये किया। ये जो आज बहुत ही अफसोस का वाकया हुआ है काबुल के अंदर, जो वहां पे दो सुसाइड बॉम्बर्स थे जिसके के बारे में इन्होंने बताया है पेंटागन के जो स्पोक्स पर्सन है जॉन किर्बी, उन्होंने कहा है कि ये एक ब्लास्ट जो है एयरपोर्ट का जो एबी गेट है वहां पे उसके पास हुआ है। ये बेचारे लोगों की हालत देखे जरा, वहां पे एबी गेट के पास हुआ है, और दूसरा वहां पे पास ही में बैरॉन होटल था उसके अंदर जी ये ब्लास्ट हुए हैं। और इसके अंदर जो अभी लेटेस्ट खबर जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है, और उसके मुताबिक इसमें 12 यूएस जो मरीन के लोग हैं उनकी डेथ हो गई है, और 60 अफगान्स की डेथ हो गई है, और इसके अलावा 145 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। तो इनको इमीडिएटली काबुल के जो इमरजेंसी हॉस्पिटल,
इसके साथ साथ 15 जो सर्विसमैन हैं अमेरिकन उनको भी बुरी तरह इंजर्ड हुए
जी, इंजर्ड हैं। 12 तो मर गए हैं, 15 इंजर्ड हैं, और बाकी के 60 अफगान्स हैं और 145 जो इंजर्ड हैं। और वो कह रहे हैं जी कि ये तो अब इसकी जिम्मेदारी वैसे तो आइसिस ने ली है, लेकिन तालिबान से पूछा गया है कि भई आप जो हैं आपने तो कहा था कि हम ये लड़ाई मारकुटाई नहीं करेंगे, तो आप क्या करें। तालिबान ने कहा जी हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है, हमारा कुछ इसके साथ लेना देना नहीं है, और ये जो सारा इलाका था ये अभी भी अंडर यूएस वॉच है, और अगर ये कुछ हुआ है तो उनके ऊपर आप ब्लेम डाल सकते हैं, हमारे ऊपर नहीं डाल सकते। हम पे ब्लेम उस वक्त डालेंगे जब यहां से तमाम फोर्सेस चली जाएंगी, और फिर अगर यहां पे धमाके या कुछ हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हम पे डाल सकते हैं, तो अभी आप हमारे ऊपर जो है हमको ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि हुआ क्या है कि एनबीसी नाइटली न्यूज के जो रिचर्ड एंजल हैं उन्होंने इंटरव्यू लिया है जबीउल्लाह मुजाहिद साहब का, ये जो है आजकल स्पोक्स पर्सन है तालिबान के उनका, और जबीउल्लाह मुजाहिद ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया है कि ये जो 9/11 के अटैक्स थे उसके पीछे उसामा बिन लादेन था। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट कहता है जी कि ये जो अच्छा जबीउल्लाह मुजाहिद साहब कहते हैं कि ये सिर्फ अमरीका ने एक वजह पैदा करने के लिए हमें डिस्ट्रॉय अफगानिस्तान को करने के लिए 9/11 के बाद जो है इन्होंने ये पूरी स्टोरी बनाई कि जी उसामा बिन लादेन जो है वो उसने ये सारा कुछ किया था, और अब आप देखेंगे कि हमारे बारे में जो आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है ऐसे जंगजू हैं और हम ये प्लान करते हैं, हम बिल्कुल प्लान नहीं करते, जैसे ही यहां से फोर्सेस सारी जाएंगी आप देखेंगे कि हम जो है अफगानिस्तान की सॉइल से किसी के ऊपर अटैक नहीं करने देंगे। अच्छा उसने कहा इतना कुछ हो गया, वो जो एंजल है उसने कहा कि इतना कुछ हो गया तो ये मतलब है इट साउंड्स लाइक के इवन नाउ जो है यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये उसामा बिन लादेन ने किया। उसने कहा कि एब्सोल्यूटली नॉट, और ये जो अमेरिका ने हमारे साथ किया, इस वॉर की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, नहीं थी बिल्कुल जस्टिफिकेशन। और ये अच्छा, उसने ना फिर क्या किया, उसने कहा कि अच्छा जी चलो ठीक है, ये जो है एक रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट का फिर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट एक आई थी और उसमें बहुत ही क्लियरली अलकायदा जो है उसका कनेक्शन और तालिबान के जो जो फॉर्मर जो लीडर थे मुल्ला उमर जो हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने जो है ये प्रेपरेशंस की थी। और ये इन्होंने कहा जी कि नहीं, मुल्ला उमर जो थे अपनी पार्टी के अगेंस्ट, उनकी विजेस के अगेंस्ट जाते हुए भी उन्होंने कहा कि हम ये अटैक जो है वो नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो कहते हैं जी कि जो 2000 में जो आई थी उसमें उन्होंने, वो कहते हैं कि जी अमरीका कहते हैं कि जी बिन लैडन जो है उसने कहा था कि मेरा 9/11 में रोल है, क्योंकि उन्होंने एक उसकी स्पीच कोई पता नहीं अब वो कहां से उन्होंने स्पीच बिन लैडन की ली, उन्होंने कहा जी कि बिन लैडन ने खुद ही कहा था कि हम पहले तो ये चाहते नहीं थे, हम अमेरिका पे अटैक नहीं चाहते थे, लेकिन जो कुछ इजराइल कर रहा था पैलेस्टीनियंस के साथ तो हमने सोचा फिर कि हम, पहले तो हमने कभी सोचा नहीं कि हम इनके टावर्स के ऊपर अटैक करें, लेकिन जो कुछ फलस्तीन के अंदर हो रहा था तो हमने फिर सोचा कि हम उसके ऊपर जो है वो अटैक करें, और जो लेबनान में आप कर रहे थे तो इस तरह करके। अच्छा, अब ये डिनाई करते हैं, वो कहते हैं जी अमेरिकन जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि नहीं ये तो अलकायदा और उसामा बिन लादेन इसमें शामिल थे, वो कहते हैं नहीं ये तुमने खाली रीजन बनाया हमारे मुल्क को एंटर होकर डिस्ट्रॉय करने का। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंटरव्यू जो कि छापा हुआ था वाशिंगटन पोस्ट ने, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आज जनाब इंडिया के अंदर जो है तकरीबन मीटिंग थी 31 पार्टीज की और उसके अंदर तकरीबन 37 लीडर्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने आज जो है ये फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला जो है उनसे पूछा कि भाई ये तुम लोग इंडिया जो है क्या कर रहा है अफगानिस्तान के सिलसिले में, कोई तुम लोग बात बात नहीं कर रहे हो। तो तकरीबन 45 मिनट्स तक वो उनको समझाने की कोशिश करते रहे लेकिन वो समझे चूंके नहीं। तो फिर उस वक्त जो इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के एस जयशंकर, उन्होंने फिर इंटरवीन किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो भी कोई आप बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है कि हम उधर तैयार नहीं थे या हम क्या नहीं थे, हमने उधर जो है लोगों में इन्वेस्ट किया था, अफगान लोगों में इन्वेस्ट किया था, हमारी मेन इन्वेस्टमेंट ये थी और हमको लगता था कि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारी दोस्ती बढ़ेगी। अच्छा, ये क्यों इनको कहना पड़ा, वो इसलिए कहना पड़ा कि उन्होंने कहा जी कि जितने भी तालिबान के लीडर्स हैं वो हर थोड़े दिन में इंडिया के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ वो जो बयान दे रहे हैं उसमें हम, यानी हमारी स्ट्रेटजी का कोई कसूर नहीं है, हमने तो लोगों में इन्वेस्ट किया था और हम समझते थे कि लोगों में इन्वेस्ट करने से हमारी दोस्ती बनी रहेगी अफगानिस्तान के साथ, तो अब अगर वो कर रहे हैं तो अब ये उनका मसला है। अच्छा, ये फिर जी वहां पे काफी बहस मुबाइजा चलता रहा। खैर, उन्होंने कुछ लोगों ने तारीफ भी की, उन्होंने कहा कि नहीं इंडिया का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है, अपने लोगों को वहां से निकाला है। चलो ठीक है, अगर गलती हुई भी है जरा, सारे ही काउंसलेट्स और सारे ही मिशन बंद कर दिए हैं, एक कद कोई खिड़की खुली रहनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इंडिया के जो काम हो सके, लेकिन वहां पर हंगामा आज काफी रहा। हंगामा जनाब इंडियन पंजाब में भी हो गया है, क्योंकि जो नवजोत सिंह सिद्धू और उनके जो एडवाइजर हैं मलविंदर सिंह माली, वो और एक और उनके जो एडवाइजर हैं, उन्होंने कुछ बयानात ऐसे दे दिए हैं कि जिससे कांग्रेस जो है वो हाई कमांड अब इतनी सिद्धू से खुश नहीं है। पहले लग रहा था कि शायद वो सिद्धू का साथ दे रहे हैं, और कम जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के वहां पे, उसको जरा थोड़ा सा साइडलाइन किया हुआ है, लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस की हाई कमांड जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे खड़ी होगी। उसकी वजह यह है कि ये जो इन्होंने मलविंदर सिंह जो हैं उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए हैं कि जो जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर का महाराजा जो था वो कभी भी नहीं चाहता था कि ये किसी पाकिस्तान के साथ जाए या हिंदुस्तान के साथ जाए, वो हमेशा से अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट चाहता था, जो उसने हिंदुस्तान के साथ उस वक्त अटैचमेंट शुरू शो की थी नेहरू साहब के साथ बात करने के बाद, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि वो मिलना चाहता था हिंदुस्तान, वो चाहता था अपनी एक सेपरेट। तो इस तरह के कुछ जब बयान आए हैं तो जाहिर है कि ये कांग्रेस के लिए जो है बैकफायर। आपको पता है ना कश्मीर का मुद्दा, हाँ। तो दोनों तरफ वो बहुत जो लाइन
है
वेरी सेंसिटिव है, तो इस तरह की अब जो इलेक्शंस हैं वो तो दे आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो वो कह रहे हैं जी कि सिद्धू साहब और इनके जो जितने भी ये एडवाइजर हैं इन सबको निकाला जाए पार्टी से, क्योंकि ये सब चीजें फिर से बैकफायर करेंगी, फिर से कांग्रेस हारेगी और फिर से बीजेपी आ जाएगी, तो इसलिए जो है इन लोगों का पार्टी के अंदर रहना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और तकरीबन 3 डजन के करीब जो है वो पार्लियामेंटेरियंस जो है वो गए हैं रावत साहब से मिलने के लिए वहां पे देहरादून में, और उन्होंने कहा जी कि ये हम इनके साथ जो है नहीं चल सकेंगे, और जो है वो हरीश रावत जो है उनसे मिलने के लिए गए, जो कि मतलब वो जो पंजाब है उसके जो पार्टी इंचार्ज हैं उसकी मैं बात कर रही थी। वो आज एक द प्रिंट की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड दिस इज रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग और इन्होंने जो है वो कहा है, इन्होंने कहा है कि इंडिया, इनकी जो हेडलाइन है, इंडिया बैक्ड रॉन्ग हॉर्स इन अफगानिस्तान एंड इट हैज टू गो इनटू अ स्ट्रेटेजिक सल्क नाउ। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि इंडिया की, इनका जो ये जो आर्टिकल है जनरल पनाग साहब का, इन ये कहते हैं कि हम हर वक्त उन लोगों के साथ अफगानिस्तान में दोस्तियां बनाते गए जिनका कि कोई अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस ही नहीं था। यानी कि मेन इन्फ्लुएंस वहां पे वॉर लॉर्ड्स का था, शायद कुछ थोड़ा बहुत जो है जिरगे वालों का था एंड मेनली तालिबान का था, उनके साथ हमने दोस्तियां बनाई नहीं है, हम अपनी बेट जो है वो रॉन्ग हॉर्सेस पे करते रहे। कहते हैं हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, इंडिया के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि शायद बहुत बड़ा जो हिस्सा जो जब गवर्नमेंट बनेगी उसका तालिबान के पास जा सकता है। और 3 साल ये बातें चलती रही हैं, जनरल पनाग कहते हैं 3 साल, कहते हैं इन्होंने ये 3 साल जो हैं गंवा दिए, कोई इन्होंने कोशिश ही नहीं की एंगेजमेंट की उनके साथ, तालिबान के साथ हाफ हार्टेड, और जो बाकियों के साथ भी जो एंगेजमेंट थी वो हाफ हार्टेड थी, कोई ऐसे इन्होंने जाके कोई अपना जो केस है वो लड़ा नहीं है। तो वो कहते हैं कि जिस वक्त आप गलत घोड़े के ऊपर बेट लगाते हैं तो फिर आप हारते हैं। तो आप जो है आपका बस ये एक्शन था कि तालिबान ने तो आना नहीं है, ये इनको आने नहीं देंगे क्योंकि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने बड़ा वेस्टर्नाइज शायद कर दिया अफगानिस्तान को, तो ये इनको नहीं आने देंगे। और जो है तो कहते हैं आपके पास अब कोई स्ट्रेटेजिक ऑप्शन रह नहीं गई है, यू हैव लॉस्ट द प्लॉट ऑलरेडी।
तो उन्होंने प्रेसिडेंट गनी को सपोर्ट किया
यस। तो वो ये कह रहे हैं ना, गलत लोगों पर आपने जो है वो किया। अच्छा जी, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं इनके साथ भी आज पुतिन साहब ने जो है फोन पे बात की। मैंने कहा ना रीजन में काफी एक्टिव हुए हैं, तो पहले शी साहब को किया, फिर उन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया, तो बहुत अच्छी वहां पे बातचीत इन दोनों की रही। और उन्होंने वही अफगानिस्तान के मसले पे कि हम दोनों जो हैं अब यहां पे स्टेबिलिटी रहना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने फिर से कहा कि पाकिस्तान के कोई फेवरेट्स नहीं है, हम सिर्फ स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां पे आनी चाहिए और उस इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है उसका हम साथ देंगे। एट द सेम टाइम इमरान खान साहब ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है जरूर अफगानियों को जो मिलनी चाहिए, और इंटरनेशनल एजेंसीज को उन्होंने फिर से कहा कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन एड जो है आप ना रोकें, आप ये जो है अफगान्स को देते रहें। अच्छा जी, आज 3 साल पूरे हो गए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, एंड दिस पीटीआई डेफिनेटली इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी गवर्नमेंट को, तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी रिपोर्ट पेश की है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वरना कोई जो है ये अपनी कोई रिपोर्ट पेश नहीं करते थे अपनी परफॉर्मेंस की। तो आज उन्होंने वो अपनी रिपोर्ट पेश की है परफॉर्मेंस की, और उसके अंदर उन्होंने सारा बताया कि किस तरह हमें मुश्किल था। और वो कहते हैं ठीक है, कोई लीडर जो होता है एक दिन में नहीं बन जाता, बड़ी मुश्किलों के बाद बनता है। जिना साहब भी बड़ी स्ट्रगल के बाद, इतने बड़े लीडर्स थे जिनको कि आपने किया, उन्होंने आज मिलिट्री की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुलवामा का जिस वक्त वाकया हुआ और ये हमारी टेरिटरी के अंदर इंडिया आ गए, तो हमारे जो थी मिलिट्री उन्होंने कैसे उसको अटैक को रिपेल किया और बाकी के भी जो अटैक्स रिपेल करते रहे हैं, उस वक्त हमें समझ आई कि हमारी मिलिट्री की क्या स्ट्रेंथ है, वरना उससे पहले। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग जो है कॉन्स्टेंटली मिलिट्री के खिलाफ बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, खैर उनका यह ख्याल है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की है, द वे वी हैव डेल्ट विद द होल कोविड थिंग। वो कहते हैं मुझे, मेरे पे बहुत प्रेशर और जोर था कि ब्लैंकेट जो है यहां पर शट डाउन कर दो, मुझे पता था पाकिस्तान गरीब मुल्क है, ब्लैंकेट शट आउट से बिजनेस छोटा वाला जो है स्मॉल बिजनेस मर जाएगा, हमने लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन किए और अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने हमारा साथ दिया और हमको सुरखरू किया। उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जब हमने जब गवर्नमेंट ली उस वक्त $20 बिलियन था, एंड दैट इज वाई हमको IMF के पास जाना पड़ा, हमारी अच्छी पॉलिसीज की वजह से इस वक्त जो करंट डेफिसिट है वो सिर्फ 1.8 बिलियन पे आ गया।
Wow.
Okay. 20 बिलियन से 1.8 बिलियन। वो कहते हैं जी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हमने लिए थे उस वक्त $16.4 बिलियन थे, टुडे दे स्टैंड एट $27 बिलियन। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि टैक्स कलेक्शन जो थी अब तक जो होती थी 3,800 बिलियन की होती, रुपीज की होती थी, हमने 3 साल के अंदर 4,700 बिलियन की जो है टैक्स कलेक्शन किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमने हमारे मुल्क में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर्स की जो सेल है वो बहुत बढ़ गई है, कार सेल जो है 85% बढ़ गई है, विच मीन्स के लोगों की हालत सुधर रही है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लोगों के पास, आम लोगों के पास आ रही है। और उन्होंने जो अपनी ये स्कीमें थी, कामयाब पाकिस्तान एहसास प्रोग्राम और इस तरह के जो है, उनका भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को डैम्स की जरूरत थी और बस जो अयूब खान साहब बना गए उसके बाद कोई डैम्स के ऊपर जोर नहीं था, तो अब हमने 10 डैम्स जो हैं उसका मंसूबा किया है जो कि 10 साल में पूरे होंगे, लेकिन जो मोहम्मद डैम है वो 2025 में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा वो कहते हैं सिंध और बलोचिस्तान में बेशक हमारी गवर्नमेंट्स नहीं है, लेकिन हम वहां पर हर वक्त उनको रिलीफ पैकेजेस जो है वो देते रहते हैं। अच्छा जी, बहुत ही एक मेन तालिबान के लीडर हैं शहाबुद्दीन दिलवर। शहाबुद्दीन दिलवर भी जो है उनकी बड़ी की पोजीशन है तालिबान के अंदर। उन्होंने आज एक स्पेशल इंटरव्यू दिया है रेडियो पाकिस्तान को और इसके अंदर उन्होंने जो ये आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनको काफी खींचा है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि ये जो है एक वाइल्ड किस्म के लोग हैं और ये जो है ये ज्यादातर ये जो आपकी जो वाइल्डनेस होती है वो उससे आप डोमिनेट कुछ अरसे के लिए तो कर सकते हैं, ज्यादा सस्टेनेंस आपकी नहीं हो सकती और इस तरह की एम्पायर्स जो हैं वो गिर जाती हैं। शहाबुद्दीन दिलवर ने आज कहा है कि मोदी जी को कि मोदी जी हमें पहले हुकूमत में आने दें तो फिर हम आपको बताएंगे कि तालिबान जो है किस तरह की हुकूमत कर सकता है। उन्होंने जो है आज इंटरव्यू वो दे रहे थे बिलाल खान महसूद को काबुल के अंदर और उन्होंने बड़ा वार्न किया है फिर से इंडिया को। उन्होंने कहा कि खबरदार अफगानिस्तान के इंटरनल मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया दिलवर साहब ने, उन्होंने कहा कि हमारा जो नेबर जिसने हमेशा हमारा ख्याल रखा है वो पाकिस्तान है और अभी भी उसके पास जो है 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज हैं और जिस वक्त हमें जरूरत थी तो पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ था, तो हम पाकिस्तान के साथ अपने फ्रेंडली टाइज इसी तरह बनाए रखेंगे चाहे उसको कोई भी कैसे भी स्पॉइल करने की कोशिश करें। तो ये आज उनका जनाब बड़ा था,
वेरी स्ट्रांग वर्ड्स।
उन्होंने कहा जी हमारे मामलात में आपको कोई खबरदार इंडिया ने इंटरफेयर किया। अच्छा जी, वी आर रीचिंग राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज। आज फिल्म जो है चेहरे के बारे में कुछ चीजें सामने आई हैं। चेहरे जो है बड़े अरसे के बाद, आपको पता ही है बहुत दिनों से कह रहे थे ये फिल्म जो है बॉलीवुड की आ जाएगी, क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी चली गई थी। रिया चक्रवर्ती थी इसके अंदर जो कि उसकी जो है वो गर्लफ्रेंड थी जो सुशांत सिंह राजपूत है, तो उसकी वजह से ये इसको पोस्टपोन कर रहे थे, लेकिन आज आनंद पंडित ने कहा है जी कि जो इनके प्रोड्यूसर हैं ये आ जाएगी कल थिएटर्स में। और उन्होंने बड़ी तारीफ की है अमिताभ बच्चन की। उन्होंने कहा जब हमने इनको स्क्रिप्ट सुनाया तो उन्होंने कहा कि मैं चेहरे में फॉर फ्री काम करूंगा और जितने भी उनके ट्रेवल एक्सपेंसिस थे उसके लिए भी उन्होंने कहा कि मैं खुद ये करूंगा। अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं जी अभिषेक बच्चन साहब, वो अपनी एक फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे थे और वो अपना बाजू तुड़वा बैठे हैं जिसके लिए उनको सर्जरी करनी पड़ी, तो वो देखे जा सकते हैं बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जी कि मैं अब मुंबई वापस आ गया हूं फॉर अ क्विक सर्जरी, इट वाज अ फ्रीक एक्सीडेंट इन चेन्नई। पाकिस्तान की जो फिल्म मेकर हैं शर्मीन उबेद चिनोय, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास हर वक्त बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं उनके हमें आते हैं कि हमारे पास स्टोरी है बताने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते फिल्म बनाने के लिए। तो वो कहती हैं कि अब मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रही हूं जिसका नाम है पटाखा पिक्चर। तो पटाखा पिक्चर में जितनी भी नई एस्पायरिंग स्टोरी राइटर्स या के फिल्म मेकर्स जो हैं उनको मेंटरशिप भी किया जाएगा और उनको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे ताकि वो अपनी जो है फिल्में जो बना सकते हैं। आपको पता है कि इनको 2 दफा ऑस्कर्स मिले थे, एक तो इन्होंने बनाई थी फिल्म गर्ल इन रिवर प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस, ये सेकेंड इनका ऑस्कर था। पहला जो इनको ऑस्कर था वो सेविंग फेस, वो जो एसिड वाली उसके ऊपर किया था, तो उन्होंने किया था। और वो कहते हैं जी कि हम अब इन सब लोगों की हेल्प करेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास भी अच्छी स्टोरीज की बहुत कमी रहती है। एंड एब्सोल्युटली आवर 2 लास्ट न्यूज जनाब, फाइनली रमीज राजा हैज बीन मेड पीसीबी चेयरमैन, क्योंकि आज एहसान मानी ने कहा जी आई एम स्टेपिंग डाउन एंड आई एम एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग एज चेयरमैन ऑफ पीसीबी।
सरफराज साहब की बात नहीं मानी गई,
बिल्कुल नहीं मानी गई। तो इन्होंने आज कहा है कि हमको पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसका जीपीएस रीसेट करना पड़ेगा एंड वी विल टेक पाकिस्तान क्रिकेट टूवर्ड्स एक्सलेंस। और हमारी जो आखिरी खबर है आईसीसी की जो रैंकिंग्स आई हैं बैट्समैन और जो हैं बॉलर्स की टेस्ट की जो आई हैं उसके अंदर जो हैं अब बाबर आजम जो हैं 8th पोजीशन पे हैं और इसी तरह हमारे शाहीन शाह आफरीदी जो बॉलर हैं वो भी अब 8th पोजीशन के ऊपर हैं, बिकॉज उनकी जो रिसेंट अभी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने जो ली हैं 18 विकेटें उसकी वजह से ये काफी ऊपर आ गए हैं जनाब।
क्या बात है जी।
हाँ जी हाँ जी,
कॉन्ग्रेचुलेशन टू बाबर आजम एंड शाहिद आफरीदी,
शाहीन शाह आफरीदी।
बहुत मुबारक हो सर आपको एंड इसी तरह आप तरक्की करते रहेंगे। ये थी आज की हमारी खबरें
जी।
और कल इंशाल्लाह ताला जुमे वाले दिन हम फिर आपके साथ शामिल होंगे यहाँ पर 6:45 बजे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा परवाह ना करें, मगर 6:45 बजे नॉर्मली टाइम है हमारा आपके साथ आने का। 6:45 बजे शादी जी और मैं आपके साथ ताज़ा तरीन खबरें लेके आएंगे। और साहब अभी आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि लियाकत मलिक साहब आ रहे हैं। लियाकत मलिक साहब क्या करेंगे, भूली बिसरी यादें, और आज की जो है नजीर बेगम के बारे में बताएंगे वो। और सब इट्स अ वेरी वंडरफुल 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 शो, देखते रहिए। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, शाजी जी का आप घर जाएंगे आज।
थैंक यू
सो मच, इंशाल्लाह कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, विल बी राइट बैक, डोंट यू गो अवे। इस्तेमाई शादी प्रोग्राम में इस्तेमाल होगी और टैक्स रसीद भी फराहम की जाएगी। आपसे इल्तिजा और अपील है कि इस नेक काम में दिल खोल कर मदद करें। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 416-471-9636 या इनकी वेबसाइट पे विजिट करें www.awfca.org। अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन।
नाज़रीन सामईन अस्सलाम अलैकुम, आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाजिर खिदमत है। एक प्रोग्राम में हमारे करम फरमा डॉक्टर मासूम शाह साहब ने मुझे ये सजेशन दी थी कि जब मैं गाने पेश करता हूँ तो उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम भी होता है, उसमें शायर का नाम भी होता है, फिल्म का नाम भी होता है, तो क्या मैं जिस एक्टर पे या एक्ट्रेस पे वो गाना पिक्चराइज हुआ है उनका नाम भी दे दिया करूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी सजेशन जो है हमारे सारांखों पर, और इंशाल्लाह ताला मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि हर प्रोग्राम में मैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं उनका नाम भी शामिल करूं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोशिश ये होती है कि हर उस फनकार का हम जिक्र करें जिसने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपना टाइम दिया और स्ट्रगल की, मेहनत की और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की हेल्प की। आज हम नज़ीर बेगम की बात करेंगे। इससे पहले कि मैं नज़ीर बेगम का जिक्र जो है आपसे करूं, दो नज़ीर बेगम थीं। एक नज़ीर बेगम जो थीं वो रावलपिंडी से उनका ताल्लुक था और वो फोक सिंगर थीं। ना उन्होंने कभी फिल्म में नहीं गाया, वो सिर्फ एक फोक सिंगर थीं जिनको जो रेडियो पे कभी 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 कभार आ जा करती थी रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से। और एक दूसरी जो नज़ीर बेगम थी या हैं वो प्लेबैक सिंगर, रेडियो से भी ताल्लुक रहा, टेलीविजन से भी ताल्लुक रहा। आज हम नज़ीर बेगम का जिक्र करेंगे जो प्लेबैक सिंगर रही हैं। नज़ीर बेगम 15 मई 1939 को लायलपुर में पैदा हुई, लायलपुर जिनको आप फैसलाबाद कहा जाता है वहां पैदा हुई। स्कूलिंग जो थी उनकी लायलपुर से ही हुई। स्कूलिंग के बाद वो गाती थी, कभी बज़्मे अदब के पीरियड में गा लिया तो बड़ी अच्छी आवाज थी, टीचर भी बहुत पसंद करती थी। उनकी शादी हुई पिशावर में, उनको मुंतकिल होना पड़ गया शादी के बाद, तो वहां पे जो उनके हस्बैंड के कोई दोस्त थे उन्होंने जब इनकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने उनके हस्बैंड से कहा कि आप रेडियो पाकिस्तान पिशावर में जाएं और वहां पे ये बड़ी अच्छी आवाज़ है, इनको यहाँ काम मिल सकता है। तो रेडियो पाकिस्तान पिशावर से नज़ीर बेगम ने अपने फनी जिंदगी का आगाज किया। इनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि कोई किसी उस्ताद से ट्रेनिंग नहीं दी थी, बस जो डायरेक्टर होते थे म्यूजिक डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान के, वो जो बता देते थे ये गा देती थी। कुछ अरसे के बाद इन्होंने कराची में जाने का इरादा कर दिया और कराची रेडियो पाकिस्तान कराची में जाकर ज्वाइन कर लिया। वहां पे इनको काफी शोहरत मिली, तो वहां पे इन्होंने क्लासिकल सीखना शुरू किया, उस्ताद प्यारे खान से इन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू की। उस्ताद प्यारे खान कुछ अरसे के बाद वफात पा गए, तो फिर उस्ताद उम्मीद अली खान से इन्होंने ट्रेनिंग ली क्लासिकल, और ये उस्ताद उम्मीद अली खान जो थे ये उस्ताद अमानत अली खान के नाना थे। 1953 में एक फिल्म बनती है, उस फिल्म का नाम था सैलाब। सैलाब में पहली दफा नजीर बेगम ने प्लेबैक सिंगर की हैसियत से उसमें गाने गाए। इस फिल्म की खसूसियत यह थी कि इस फिल्म में सबिया खानम भी थी और इस फिल्म के हीरो थे मसूद, और इस फिल्म में पाकिस्तान की मशहूर मुगनियां जो थी फरीदा खानम, उन्होंने भी काम किया था, और फरीदा खानम का फिल्मी नाम जो था उसमें नीली रखा गया था। अब मजे की बात यह है कि फरीदा खानम खुद भी गाती थी, लेकिन जो गाना पिक्चराइज हुआ फरीदा खानम पे वो नजीर बेगम की आवाज में ही हुआ। ये हम गाना देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। सावन की काली घटा, सावन की काली रात में तुम नींद बनकर आए, जरा ये देखिए, उसके बाद फिर वापस आते हैं।
सावन की काली रात में तुम नींद बनके आए, तुम नींद बनके आए, सावन की काली रात में तुम नींद बनके आए, और तुम नींद बनके आए।
नाज़रीन, जैसे 1953 में नज़ीर बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, और 1956 में एक फिल्म बनी मिस 56, मिस 56, मिस 56 में हिंदुस्तान से आई हुई एक एक्ट्रेस मीना शोरी और उनके हस्बैंड का नाम था रूप किशोर शूरी, ये पाकिस्तान तशरीफ लाए और 1956 में फिल्म शुरू की मिस 56। इस फिल्म में मेहदी हसन साहब ने नज़ीर बेगम के साथ दो डुएट गाए, ये पहले डुएट थे जो मेहदी हसन साहब ने किसी फिल्म में किसी खातून गुलकारा के साथ गाए थे। इस फिल्म की खसूसी बात यह थी कि इस फिल्म में दीबा खानम ने चाइल्ड स्टार का रोल अदा किया था और इस फिल्म के जो राइटर थे उस उन फिल्म का जो थे ये आईएस जौहर, हिंदुस्तान के जो आईएस जौहर जो राइटर थे फिल्म एक्टर भी थे, उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी थी। इस फिल्म में गीता दत्त जो हिंदुस्तान की जो गुलकारा थी उन्होंने गाने भी गाए थे। हिंदुस्तान में विनोद ने गीता दत्त के गाने का म्यूजिक दिया था और पाकिस्तान में जी एस चिश्ती ने म्यूजिक दिया था।